जीवन रूप को क्यों विसराया, झूठे मद में नित लिपटा। साथी पुरुष घट माही पछान, जीवन शकत जो सरब निधान। मेरे शरीर की कीमत कब तक है, जब तक इस देह में जीवन है तभी तक इसकी कीमत है। लेकिन मैं जीवन के बारे में कभी नहीं सोचता, ये क्या चीज है। देह के जीवन को या जिस्म के अंदर जो जान है उसको कौन जानता है, इसके कारण कब तक वो इस शरीर के अंदर उपस्थित है। मैं तभी तक कुछ सोच सकता हूँ, तभी तक कुछ कर सकता हूँ जब तक ये जीवन शरीर में मौजूद। लेकिन ये जीवन आया कहाँ से है इसके बारे में मेरे अंदर कोई सोच नहीं, दूर दूर तक कोई इस बारे में नहीं सोचता, जिसके कारण से देह की कीमत है, जिसके कारण मेरा अस्तित्व है, उसके लिए मैं कभी सोचता ही नहीं। जरा सा संसार का काम बिगड़ जाए दिन भर सोचता रहता उसके बारे में, तो जिसके आधार पर देह चल रही है उसके बारे में सोचता ही नहीं। इसलिए वाणी आपको याद दिला रही है, जीवन रूप को क्यों विसराया, झूठे मद में नित लिपटा। मैं देह हूं ये तेरा झूठा नशा है, झूठा मद है, इसमें तू लिपायमान हो रहा है, इसमें तू फंसा हुआ है। और जो जीवन रूप है उसको तू भूले बैठे, खाली वो जीवन रूप ही नहीं है, माने एक और बात भी कह रही है, साखी पुरुष घट माही पछान, जीवन शकत जो सरब निधान। खाली वो जीवन ही नहीं है, वो कहते हैं साखी भी है, साखी पुरुष, साखी कहते हैं साक्षी, साक्षी कहते हैं दृष्टा। केवल जीवन ही नहीं है, वो साक्षी भी है, वो दृष्टा भी है। इसी को गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जीवनम सर्वभूतेषु, मैं सारे प्राणियों में जीवन हूं। लेकिन इन बातों पर हम कभी विचार नहीं करते, इसकी जरूरत भी नहीं समझते। सारी वाणी सारे शास्त्र भरे पड़े हुए हैं इस विज्ञान से, हम भी पता नहीं कितनी बार सुन चुके होंगे, कितनी बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन विचार इस पर नहीं करते है क्या चीज। वाणी में दो पंक्तियां आती हैं, नाभ कमल है अचरज थाना, जामे बसया श्री भगवाना, जहां से उपजे श्वास का थंबा, सुरती खेले खेल अचल। विचार करिए जरा, ये वाणी इसी जीवन के बारे में विचार कर रही है। मेरा जो नाभि चक्र है, नाभि कमल है, ये अचरज स्थान है देह के अंदर। क्यों अचरज स्थान है, जामे बसया श्री भगवान, इसमें भगवान का निवास है। इसका प्रमाण कैसे भगवान का निवास है, मैं जानता हूं मेरी देह श्वास के कारण चल रही है, प्राण के कारण चल रही है, ये तो देह जीवित नहीं रह सकती। तो भगवान कर क्या रहे नाभि के अंदर, जहां से उपजे श्वास का थंबा, जहां से श्वास उत्पन्न होती है, पैदा होती है, सुरती खेले खेल चल रहा है। जो इस विज्ञान को जानते हैं या उसके अनुभव से गुजरते हैं उनके लिए बात कही जा रही है, सुरती खेले खेल अचंबा। जो सुरत है वास्तव में यही बुद्धि, लेकिन बुद्धि हम शायद केवल निर्णय करने वाली शक्ति को समझते हैं। तो निर्णय करती है, तो जानती है कि मैं सही हूं या गलत हूं, क्या ठीक है क्या गलत है, इसका निर्णय करती है। हम उसको बुद्धि कह देते हैं, लेकिन वाणी एक दूसरी बात भी कह रही है, सुरति खेले खेल अचंभा। उस आश्चर्यजनक खेल को ये सुरति अनुभव करती है। तो सूरत महाराज ने खुद कहा कि ये सूरत बुद्धि को कहते हैं। मैं तो इस चीज को जानता नहीं, मैं तो ये जानता हूं कि हाँ बुद्धि निर्णय करती है, निश्चय करती है। तो संत अपराय करके महाराज ने खुद लिखा भी, ये वाणी निश्चयात्मक बुद्धि प्रदान करने वाली है, इससे बुद्धि का निश्चय दुरुस्त हो जाता है। जैसे अभी हम जो वाणी उच्चारण कर रहे थे, ये हमारे निर्णय को ही तो बदल रहे हैं, सही निर्णय को ही तो बता रहे हैं। मैं कौन हूं, जीवन का रक्षक कौन है, ये सारी बातें बुद्धि के निश्चय में आ जाती हैं। तो जब ये नाभि कवल जिसमें भगवान का निवास है, इसका जीव को जब गुरु साधना के अनुसार जब वो चलता है, परहेज करता है, तब इस भगवान का उसको अनुभव होता है। इस जीव को यानी बुद्धि को उसका अनुभव होता है। उस अनुभव को शास्त्रों में कुंडली जागरण कहा जाता है। कुंडली शक्ति का इस जीव को पहला बोध होता है। तो वास्तव में जीवन है कौन, हम जानते हैं कि मेरी जो देह की गति है, मेरे देह का जो जीवन है, वो श्वास के कारण चल रहा है। और श्वास का उदय कहां से हो रहा है, श्वास उत्पन्न कहां से हो रही है, वो नाभ कमल से हो रही है। नाभ कमल में प्रभु विराजमान है। प्रभु किस रूप में विराजमान है, वहां इस कुंडली रूप में ही विराजमान है। ये प्रभु के द्वारा दिया गया जीवन है मुझको, जिसके आधार पर मेरी श्वास चल रही है, जिसके आधार पर मेरा सारा शरीर कार्य कर रहा है। श्वास का आना जाना बंद हो जाए, आप एक मिनट भी जीवित रह सकते हैं। प्रभु की इतनी बड़ी कृपा, उसकी एबीसीडी मुझे नहीं मालूम, क्या बुद्धि का उपयोग कर रहा हूं। मेरी जान जा रही है, मैं जान बचाने में समर्थ ही नहीं हूं, उसके विज्ञान का मुझे कुछ पता नहीं। दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिलकर भी इसका निर्णय नहीं कर सकते, कितनी भी बायोलॉजी पढ़ लो, इसका निर्णय नहीं कर सकते। इसका निर्णय केवल गुरु ही करता है, केवल ईश्वर ही करता है, केवल वाणी ही करता है। इसीलिए जिस मनुष्य का गुरु नहीं, उन गुरु पर जिससे कोई श्रद्धा नहीं, धर्म तो बहुत तरह से पालन करते हैं, लेकिन पता एबीसीडी का भी नहीं कि धर्म क्या होता है, तो संसार में भटकते ही रहते हैं, माया के चक्कर में, कामना के चक्कर में, तो जिंदगी खत्म हो जाती है। वहम पाले रखते हैं कि मैं तो बड़ी पूजा पाठ करता हूँ, बड़े व्रत करता हूँ, लेकिन उनको पता ही नहीं लगता सारी जिंदगी धर्म था क्या और मैं करता क्या। इसलिए बड़े भाग्य से कभी ये वाणी यदि पढ़े हम ध्यान से, तब समझ में आती है कि वाणी कह क्या रहा है। जब मनुष्य पर विचार करता है, तब अपने रास्ते को दुरुस्त करता है, धर्म के सही रूप को वो पालन करता है। इसीलिए विचार करिए, यदि जीवन के स्रोत का मुझको अपने देह में पता ही नहीं लगा, तो फिर क्या होता है। मैं सारी जिंदगी अपने आप को केवल देह समझता हूं, और देह तो जड़ है, जड़ देही को करे सरजीव, तो इस जड़ देही को सरजीवित किए हुए जानना तो मैंने उसको था, इस मृत देह का मैं क्या करूंगा, मेरे किस काम की। वास्तव में जिस मनुष्य ने मनुष्य जन्म लेकर उस ईश्वर के बोध का कोई प्रयास ही नहीं किया, या उसकी जरूरत नहीं समझी, तो वाणी तो ठीक ही कह रही है, बिना विवेक मनुष्य जो होई पशु समान जीवन सुख होई, इसमें क्या गलत है। लेकिन मैं कभी इस बात पर विचार इसलिए नहीं करता क्योंकि ये बात कभी मैंने ना ध्यान से पढ़ी ना इस पर विचार करने की जरूरत समझी। तो मैं जीते जी इस जीवन रूप शक्ति से, जीवन रूप प्रभु से अनजाना ही संसार से विदा हुआ। इसीलिए ये दो बातें याद रखें हैं, साखी पुरुष घट माही पहचान, जीवन शतत जो सरब निधान, जो सारी जीवन शक्ति का निधान है, खजाना है, और जो साक्षी रूप है। इन्हीं दो बातों को गीता आपको कह रही है कि जीवनम सर्वभूतेषु, पहली बात वो कह रही है जीवनम सर्वभूतेषु, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सारे प्राणियों का जीवन हूं, उसकी मैंने संभाल करनी है। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि साक्षी पुरुष, साक्षी कौन किसको कहते हैं, जिसमें चेतना होती है, जो चेतन है, जो जानता है, वही साक्षी है। हम जानते हैं कि ईश्वर वो सत्ता है जो सारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब कुछ जानती है, इसलिए वो सबके मालिक भी है, लेकिन मैं नहीं जानता। तो गीता दूसरी बात में कह रही है, जैसे अध्याय में जाकर भूता नाम अस्मि चेतना, सारे प्राणियों में चेतन मैं हूं, जीवन भी ईश्वर ही है, मैंने जो चेतना है वो चेतन भी ईश्वर है, तो मेरा ईश्वर के बिना कोई काम चल सकता है क्या? बुद्धि के अंदर जो हमारे अंदर ज्ञान शक्ति है या जो निश्चय शक्ति है उसको दुरुस्त करने के लिए तो ये वाणी आ गई, लेकिन दूसरी बात का तो हमको होश ही नहीं है। भूता नाम अस्मि चेतना, भगवान कह रहे हैं कि सारे प्राणियों में जो चेतना है वो मैं हूं, मुझको पता है मेरे अंदर चेतना है, मैं जानता हूं। अब किसी का नाभि कमल खुल भी जाए, वो प्रभु की कुंडलन शक्ति जागृत भी हो जाए, लेकिन अनुभव कौन करेगा? अनुभव तो उसका चेतना ही करेगी ना। जब आपने चेतना ही नहीं है तो फिर तो मरे हुए मनुष्य की तरह होगा, फिर आप कुछ जानते ही नहीं, इसका मतलब आपने चेतना नहीं है, मुर्दा शरीर नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। तो ये मेरी ये चेतना निवास कहां करती है? ये बुद्धि में ही निवास करती है। इसीलिए उस नाभि चक्र में उस प्रभु का अनुभव, ये सुरत करती है। तो बुद्धि की जो चेतन शक्ति है उसका ही नाम सुरत है, और वो कौन है? वो प्रभु की देन है, प्रभु से सीधी इस बुद्धि के अंदर आई है। अब बताइए मुझे कि मैं कितना अज्ञानी हूं कि प्रभु का मुझे होश ही नहीं। ये जो चेतना बुद्धि में प्रभु ने दी है किस वास्ते दी है? ताकि बुद्धि इस जड़ शरीर के मोह से इस ज्ञान के द्वारा मुक्त हो और अभ्यास के द्वारा, स्मरण के द्वारा उस चैतन्य रूप ईश्वर को इस देह के अंदर ही अनुभव हो सके। तो पहला बुद्धि का संयोग जो बनता है इस देह के अंदर वो जीवन शक्ति के साथ बनता है, जिसको नाद कहा जाता है, जिसको कुंडलनी कहा जाता है। किसी को वो रोम रोम के नाद के रूप में अनुभव होता है, किसी को वो रोम रोम के जीवन शक्ति के रूप में अनुभव होता है, और जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है वो शक्ति इस पूरे शरीर को ढक लेती है, यही कहिए पूरा शरीर ये वो शक्ति रूप ही इस जीव के अनुभव में आने देता है। उस दिन पता लगता है ये जीवन मेरे शरीर के अंदर ही नहीं है, इस सारी सृष्टि में वही जीवन कार्य कर रहा है, इसलिए एक शरीर की लीला ही नहीं चल रही है, एक परमाणु भी है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो चक्कर काट रहे हैं। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, कितने छोटे बड़ा और भी मौजूद है, और किस स्थायी गति से वो घूम रहे हैं, कोई इनके में चेंज नहीं आया। कौन नुबारा है उसको तो देह का अहंकार है, क्योंकि अणु को देह का अहंकार नहीं है क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। इसीलिए मैं जान सकता हूं सारी सृष्टि के हर रहस्य को इस देह के अंदर रहते हुए ही जान सकता हूं, लेकिन मैं छोटी छोटी वास्ता के चक्कर में, छोटी छोटी इच्छाओं के चक्कर में पड़ रहा हूं, संसार में इतना कीमती जीवन नष्ट कर देता हूं और कभी सोचता ही नहीं कि मैं कितना बड़ा राजा था और क्या एक भिखारी बनकर मैंने मानव जन्म लेती थी। वास्तव में यही कर रहे हैं, हम राजा लेकिन भिखारी बनकर संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपनी कीमत का हमको बोध ही नहीं। तो जब तक सत्पुरुषों की इन बातों पर ध्यान नहीं दोगे आपकी बुद्धि क्या खुलेगी कैसे? तो प्रभु जीवन भी है, प्रभु चेतना भी है, मैं क्या हूं? आप इस देह में से जीवन निकाल दिए, चेतना निकाल दी, आप क्या हो? ये केवल शरीर, केवल एक पत्थर की तरह से है, कुछ भी नहीं, यही कहिए मट्टी की तरह से। इसलिए इसको जला देते हैं, राख बन जाती है, इसकी मट्टी मट्टी में मिल जाती है। तो इस देह की यदि कोई कीमत थी, कब तक थी? जब तक इसमें जीवन था, जब तक इसमें चेतना थी। और मैं जब इस देह को त्याग करता हूं, अर्थात मैं कहता हूं मेरी मौत होती है, जबकि मेरी मौत है नहीं, मौत देह की, परिवर्तन देह में, मैं जैसा था वैसा ही रहता हूं। इसीलिए ये चेतना, ये जीवन मुझको मौत के वक्त भी नहीं छोड़ते। तो मनुष्य का ये प्राण, तो श्वास आ रही है जा रही है, जहां से ये उदय होती है उसी में ही लीन होगा, वापस उसी में प्रवेश करता है। और मेरा मन जिसके अंदर मेरी वासना पल रही, इच्छाएं पल रही, वो मन भी उसी के अंदर प्रवेश कर जाता है। और मैं, इसको हम बुद्धि कहते हैं, मैं भी उसी जीवन शक्ति के अंदर ही प्रवेश कर लिया। अब बताइए, इस देह की जब मौत हुई तब भी प्रभु ने मुझको नहीं छोड़ा, मैं अपने ही इंद्रियां, अपना ही मन, अपनी ही बुद्धि सबके साथ उस जीवन शक्ति में ही, उस चेतन शक्ति में ही प्रवेश कर जाता हूं जिसको हम ईश्वर कहते हैं। तो बताइए मेरा पिता कौन है, मेरी माँ कौन है? ये संसारी माँ मेरी माँ है, संसारी पिता मेरा पिता है, या जो मौत के वक्त ही मेरा संग नहीं छोड़ता, हर चीज मेरी सुरक्षित रखता है, वो मेरा पिता है, वो मेरी माँ है? तो झूठे माँ बाप को मैंने अपने बना लिए, सच्चे माँ बाप को उनको मैं भूल गया। इसीलिए मेरा सारा जीवन ये पशु कर्म है, इसके अलावा 1% भी इसको अच्छा कर्म नहीं माना जा सकता, केवल पशु कर्म। और सत्य तो ये है कि मैं पशु कर्म ही नहीं करता बल्कि पाप साथ में करता हूं, इसीलिए ये पशु कर्म ही नहीं है तेरा, तेरा पशु से भी नीच कर्म है, क्योंकि तू पाप भी साथ में करता, पशु पक्षी पाप नहीं करते, उनको भगवान ने बुद्धि नहीं दी, इसीलिए वो पाप कर ही नहीं सकते, लेकिन मनुष्य को बुद्धि दी है, उसमें जागरूकता दी है, इसीलिए ये पाप कर सकता है। इसलिए यदि मनुष्य ईश्वर मार्ग पर नहीं चलता गंभीरता से, तो याद रखिए आप कितने अच्छे इंसान संसार में क्यों ना हो, आप पाप कर ही रहे हैं, चाहे इसका बोध आपको है या नहीं। ये तो कह सकते हैं कि दूसरे की दो खूबी है, मेरी एक ही खूबी है, मैं अंधों में ताने राजा तो हो सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पापी ना हूं, अच्छा इंसान होने के बाद भी मैं पापी हूं। बात आपको तभी समझ में आएगी तो शास्त्र के मर्म को, वाणी के मर्म को आप सही रूप में समझने वाले बने। इसलिए ये जीवन इतना सस्ता नहीं, बड़ा ही कीमती जीवन है, इसको हम ऐसे ही ना बता दें। इसीलिए जो पूर्ण गुरु हमको मिला है, उस गुरु के बहाने हमको ये वाणी मिली, इस वाणी पर विश्वास मिला है, मेरा गुरु है, मेरे गुरु की वाणी, गुरु से मेरा करके मेरा संबंध बन जाता है। वो गुरु तो सारे जगत का गुरु है, लेकिन उससे संबंध किसी का नहीं बनता। संबंध जब मेरा लगा देता हूं तब बनता है। इसलिए हमारा ये भाग्य है कि हमारा पूर्ण गुरु से संबंध बना है। इसलिए उस विचार पर, उस वाणी पर, गुरु के जीवन पर हमारा विश्वास था। अभी भी हम गुरु के जीवन को सुन रहे थे, शिष्य की बातों को भी हम सुन रहे थे। शिष्य कितना अज्ञानी होता है, कितना उसने प्रयास करना है, लेकिन वो चाहता है कि पके पकाए गुरु हमको दे दे। याद रखिए, जिस प्रकार पाप इकट्ठे करके आपने अपना पतन किया है, उसी प्रकार पुण्य इकट्ठे करके आपने अपना उत्थान भी कर लिया। और इस पतन उत्थान यानी यूं कहिए कि पाप और पुण्य से ऊपर उठना है, निर्लेप बनना है, साक्षी बनना है, ईश्वर बनना है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि निज स्वरूप का करो विचार, दुर्मत रोग जाए दुख सार, जड़ देही को करे सरजीत, सो ही तेरा रूप पुनीत। वो तेरा पवित्र रूप है, अपने रूप की करो संभाल, दुर्मत काट दही का जाए। मैं देहू तेरी दुर्मति, इसीलिए जीवन रूप को क्यों विसराया, जूगे मद में नित निपटाया। तो अंत में कह रहे हैं कि साखी पुरुष घटमाही पछान, जीवन शतक जो शरद में था। तो मेरी देह में ही वो साक्षी मौजूद है जिसको ईश्वर कहते हैं, वही जीवन मौजूद है जिसको ईश्वर कहते हैं। ये दोनों चीजें ईश्वर के अंदर है, ये दोनों चीजें देह के अंदर नहीं है। यदि देह में होती देह नहीं मरती, देह मर जाती। ये तीन काल मृत ही है, ईश्वर के कारण उसको चलती फिरती नजर आ। इसीलिए सबसे कीमती चीज ईश्वर है इस देह के अंदर, मैंने उसके लिए जीवन व्यतीत करना है, संसार का केवल काम चलाना है, तब मेरी बुद्धि एक दिन होश में आकर सही कर्म करेगी और मार जीवन को सफल करेगी। ओम ग्रंथ।